प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा, मन का दर्पण दमकने लगेगा, चिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा, सारी काया हो बनेगी निरोगी, मेरे प्यार बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता, योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता, आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता, योग महिमा हो कभी कम न होगी, मेरे प्यार बनो राजयोगी, जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यार बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम।
ओम शांति। आज इंटरनेशनल योगा डे है और आपका विषय भी योगी है। योग में दो प्रकार की बातें आती, एक है शारीरिक क्रियाएं जिस पर हम सभी आज के दिन पर प्रकाश डालते हैं शारीरिक रीति से स्वस्थ बनने के लिए, लेकिन योग अधूरा है जब तक हम अंतर जगत की ओर नहीं जाते, अपने आप से नहीं जुड़ते। और जितना ही अपने आप से जुड़ते, अपने जीवन को समझ पाते और बेहतर जीवन बनाने का संकल्प करते, जीवन को और बेहतर से बेहतर बना सकते। और इसी विषय को और अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए हमारे बीच आदरणीय गीता दीदी जी पहुंचे हैं। हम सभी कर्तव्यध्वनि द्वारा उनका स्वागत करेंगे। आपने 1969 में अपनी 14 वर्ष की आयु में ही ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं। उनको ब्रह्मा कुमारी संस्था का परिचय हुआ और अपने स्टूडेंट लाइफ में ही उन्होंने राज्यों का अभ्यास करना शुरू किया और इस पढ़ाई राज्यों के अभ्यास के साथ उनके जीवन में भी इतना प्रभाव रहा, जो अपने स्टूडेंट लाइफ में भी उन्होंने साउथ गुजरात में मैट्रिक बोर्ड में अव्वल नंबर प्राप्त किया गुजरात में। उसके पश्चात 1972 में ब्रह्मा कुमारी संस्था में इन्होंने अपना जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित कर ईश्वरीय सेवा में अपना जीवन दिया। आपने भरूच, अहमदाबाद, बड़ौदा आदि में 14 वर्ष विभिन्न स्थानों पर रह करके सेवाएं दी। भावनगर के आप सब जोन इंचार्ज के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। 1993 से आपने ब्रह्मा कुमारी संस्था का एक स्थान है जिसको हम कहते हैं ज्ञान सरोवर। आप आज जाओगे ऊपर तो देखोगे ज्ञान सरोवर जो स्थान है वहां के आवास निवास और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य भी आपने 17 वर्ष देखा है। वहां उन्होंने नियमित रूप से वो सेवाएं दी है। तत्पश्चात वर्तमान समय आप शांतिवन में रहकर ब्रह्मा कुमार भाई बहनों के नियमित कार्य को देखते और ब्रह्मा कुमार संस्था की टीचर्स ट्रेनिंग एक प्रोग्राम होते हैं उसमें आप बहुत अच्छी रीति से बहनों को ट्रेनिंग देकर के तैयार करते, एक प्रभावी शिक्षिका के रूप में भी आपका मुख्य रोल है। तो राज्यों के माध्यम से इन्होंने जो एक स्थिति प्राप्त की है, समरसता, हर अवस्था में एक रस जो अवस्था प्राप्त की है, उस अनुभव को वो आप अपने साथ, आप सबके साथ शेयर करेंगे। आदरणीय गीता दीदी जी।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। राजयोग के आज के तीसरे सत्र में योग की यथार्थ विधि और आधार के बारे में समझेंगे। पूर्व दो सत्रों में दो मूल सत्यों को आपने समझा है कि हम स्वयं कौन हैं और पिता परमात्मा कौन है। योग अभ्यास करने वाले हम स्वयं चैतन्य शक्ति आत्मा हैं और हमें योग लगाना है उस परम चैतन्य शक्ति परमात्मा पिता से। तो देखिए, ना हम भौतिक हैं, शरीर भौतिक है, पर आत्मा अभौतिक, अलौकिक चैतन्य शक्ति है। तो न हम भौतिक हैं, न परमात्मा भौतिक है। अंडरस्टूड है आत्मा का परमात्मा से मिलन, कोई भौतिक साधन से या प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता है। चित्र में बताया है कि एक वक्ता और श्रोताओं के बीच संपर्क मिलन किस विधि से होता है, कॉन्टेक्ट थ्रू लाइट एंड साउंड। अगर यहां घना अंधेरा हो और मैं बोलूं ही नहीं, ये साउंड सिस्टम ना हो, तो मेरे और आपके बीच जो संपर्क स्थापित होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। तो इसको कहेंगे कॉन्टेक्ट थ्रू लाइट एंड साउंड। हम टेलीफोन के द्वारा एक दो के साथ संपर्क करते रहे हैं, मिलन मनाते हैं, बातचीत करते हैं, वो है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक पावर से कॉन्टेक्ट होता है। आजकल हम मोबाइल के द्वारा एक दूसरे से मिलते हैं, संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से कॉन्टेक्ट होता है। लेकिन आत्मा का परमात्मा से मिलन कोई भौतिक साधन या प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन मनन शक्ति, संकल्प शक्ति के माध्यम से होता है। हम मनन चिंतन करते हुए परमात्मा की याद में एकाग्र हो सकते हैं। इसलिए प्रसिद्ध योग शास्त्र गीता में भी स्पष्ट कहा है कि मन मना भव, तुम्हारा मन मेरे में लगाओ, मयीं बुद्धि निवेशय, तुम्हारी बुद्धि मेरे में लगाओ। अब हम अपने मन और बुद्धि कहीं और लगाकर बैठे हैं और फिर परमात्मा की याद में एकाग्र होने के लिए मेहनत करते हैं, क्रियाएं करते हैं, कितने न साधनों का आधार लेते हैं। लेकिन राजयोग में न कोई शारीरिक क्रियाएं हैं, और ना ही इसमें कोई औपचारिक क्रियाएं हैं। योग के नाम पर हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं, आसन, प्राणायाम, व्यायाम करते रहते हैं, लेकिन राजयोग में न आसन करना है न प्राणायाम चढ़ाना है। आप अपनी तंदुरुस्ती के लिए भले आप आसन करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए, वो फिजिकल हेल्थ के लिए है, परंतु जहां तक परमात्मा से योग लगाने की बात है, इसमें कोई आसन प्राणायाम की आवश्यकता नहीं है। हमें मन परमात्मा में आसन्न करना है, स्थित करना है, न कि शरीर से सिर्फ आसन लगाते रहना है। इसलिए राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि जब भी परमात्मा की याद में बैठें, फिजिकली रिलैक्स होकर के बैठना है। कई आसन प्राणायाम की क्रियाएं इतनी कठिन है, माताएं, बहने, बूढ़े, बीमार कर ही नहीं सकते हैं। परमात्मा को याद करने की विधि ऐसी मुश्किल नहीं होनी चाहिए जो कोई कर सके कोई ना कर सके। यहां आप आराम से कुर्सी सोफा पर बैठे हैं, अगर आप सबको आसन लगाकर बिठा दिया जाए तो मुश्किल लगेगा। हम एक सिंपल पलथी मारकर भी नहीं बैठ पाते हैं, इसलिए शारीरिक रूप से रिलैक्स आराम से बैठना है। अब हमारे शरीर भी ऐसे रोगी बन गए हैं, किसी को घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, हम अपनी सहज स्थिति में भी लंबे समय तक नहीं बैठ पाते हैं। इसलिए राजयोग में कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं है, फिजिकली रिलैक्स, मेंटली मन से अटेंटिव होकर बैठ। जब भी परमात्मा की याद में बैठें, लक्ष्य पूर्वक बैठिए कि ये आधा घंटा, घंटा, दो घंटा परमात्मा की याद के लिए मैं बैठा हूं, इस अटेंशन से बैठ। अभी मुझे और बातें नहीं सोचनी, और अनेकानेक बातें घर गृहस्थी की, समाज संसार की, शरीर की, परिवार की, नौकरी धंधे की, और अनेक बातें सोचने के लिए बाकी के 22 घंटे हैं। हम लक्ष्य रखें रोज सुबह 1 घंटा और शाम संध्या के समय 1 घंटा कम से कम परमात्मा की याद में मुझे रहे। और बातें अभी नहीं सोचनी, तो फिजिकली रिलैक्स, मेंटली अटेंटिव होकर हमें बैठना है। इस योग अभ्यास में कोई बाह्याचार भी नहीं है, कोई औपचारिक क्रियाएं भी नहीं है, जैसा कि परमात्मा को याद करने के लिए हम रटते हैं, जपते हैं, माला फेरते हैं, कोई मुख से आरती भजन गाते हैं। राजयोग में न रटना है, न जपना है, न मुख से आवाज करना है। रटना जपना नेचुरल क्रियाएं नहीं है। हम अपने मित्र संबंधियों को याद करते हैं, क्या हम उनके नाम की माला फेरते हैं? महेश भाई, महेश भाई, महेश भाई, हम रटते हैं, जपते हैं? नहीं, हम उन्हें नेचुरल याद करते हैं। परमात्मा में मन लगाने के लिए हम ये औपचारिकता क्यों करें, जबकि अनुभव भी है कि माला फेरते हैं और मन भी फिरता रहता है। क्योंकि रटना जपना आर्टिफिशियल औपचारिक क्रियाएं हैं। अभ्यास हो जाने के बाद हम रटते रहेंगे, माला फेरते रहेंगे और मन भी फिरता रहे, क्योंकि जो क्रियाएं आर्टिफिशियल है उसमें मन इंटरेस्टेड नहीं रहता है, फिर वो भटकना शुरू कर देता है। इसलिए हमारे ज्ञानी भक्त, देखिए कबीर जी ने भी क्या कहा है कि माला फेरत युग हुआ गया न मन का मैल। इसलिए उन्होंने खुद क्या सजेस्ट किया है कि हाथ के मण के छोड़ दे मन का फेर। हाथ से मण के फेरने की आवश्यकता नहीं है, मन रूपी मणके को फेरना है। आज हमारा मन देहाभिमानी बन गया है, बॉडी कॉन्शियस बन गया है। आज हमारा मन बहिर्मुखी बन गया है, संसाराभिमुख हो गया है। हमें मन और बुद्धि को अंतर्मुखी बनाना है, मन और बुद्धि को परमात्मा भिमुख करना है। तो हमें मनोस्थिति को बदलना है। इसलिए राजयोग में न माला फेरते हैं, न मंत्र रटते हैं। हम कोई न कोई मंत्र लेते हैं और फिर रटते हैं। यहां हम ये सिखाते हैं कि हमें मंत्र सिर्फ रटना नहीं है, हमें मंत्र के अर्थ को समझना है और आचरण में लाना है। कई बार हम मंत्र रटते हैं पर उसका अर्थ भी नहीं समझते। देखो, घर परिवार में कई धार्मिक प्रसंगों पर, मांगलिक प्रसंगों पर हम ब्राह्मण पंडित पुजारी को बुलाते हैं और वो मंत्रोच्चार करते हैं। बताइए उस समय बैठे हुए कितने लोग उस मंत्र के अर्थ को समझते हैं? वो मंत्र बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, पर कितने लोग अर्थ समझते? जब अर्थ नहीं समझते हैं तो अभ्यास क्या करेंगे, आचरण में क्या लाएंगे? इसलिए राजयोग में हमें कोई शब्द मंत्र रटना नहीं है, हमें मंत्र के अर्थ को समझकर आचरण में लाना है। इसलिए राजयोग में ऐसा नहीं है कि हम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति रटे, या शिव बाबा कोई बोलना की बात नहीं है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति लिख लिख कर नोटबुक भरने की बात नहीं, हमें ओम शांति बनना है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, हमें उस स्थिति में स्थित होना है, उस अनुभूति में रहना है। हम ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय रटते हैं, बहुत भावना और श्रद्धा से दो हाथ जोड़कर शिव को नमन भी करते हैं, लेकिन फिर सारा दिन हमें याद भी नहीं रहता है कि वो शिव परमात्मा हमें क्या कह रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। हमें शिव परमात्मा की आज्ञा पर चलना। आपका बेटा रोज आपको नमन करे, गुड मॉर्निंग करे, पांव लगे, पर फिर सारा दिन आपकी एक भी बात माने नहीं, तो आप अपने बेटे को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि भाई ये बाह्याचार करने की जरूरत नहीं है, मैं जो कहता हूं वो तुम कर, मेरी सही बातों को मानो, मेरे कार्य में मददगार बनो। अगर हमें परमात्मा पिता से सच्चा प्यार है तो हम उनकी आज्ञा पर चले, हम उनकी श्रीमत को माने, हम उनके ज्ञान और गुण को जीवन में धारण करें, वो हमारा सच्चा प्यार है, वो हमारा सच्चा डिवोशन है। इसलिए राजयोग में न माला हम फेरते हैं, न मंत्र रटते हैं, ना ही मुख से कुछ भी गाना बजाना, आवाज नहीं करना है। हम साइलेंस में बैठकर मन ही मन उस पिता को याद करते हैं, मन ही मन उनका चिंतन करते हैं। मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है, ये आवाज की दुनिया है। परमात्मा इस आवाज की दुनिया से दूर, पांच तत्वों से पार परम धाम के निवासी, वहां कोई आवाज नहीं है, वो साइलेंस की दुनिया है। तो मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। कौन सा आवाज पहुंचता है? मन का आवाज, अंतर मन का प्यार परमात्मा को पहुंचता है। दिल का सच्चा प्यार पिता परमात्मा को पहुंचता है। इसलिए आवाज नहीं करना है, साइलेंस में बैठकर हमें उस पिता परमात्मा को याद करना है। तो इस प्रकार राजयोग में ना कोई शारीरिक क्रियाएं हैं और ना ही कोई औपचारिक क्रियाएं हैं। कई पूछते हैं तो हमें योग किससे लगाना है? हम सामने क्या रखें? मूर्ति रखें, चित्र रखें, फोटो रखें, दीवा जलाएं, हमें योग कहाँ लगाना है? भक्ति में तो हम कोई ना कोई चित्र, मूर्ति, फोटो सामने रखते हैं और परमात्मा को याद करने का प्रयास करते हैं। राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि हमें योग डायरेक्ट उस परम चैतन्य पिता परमात्मा से लगाना है, न कि परमात्मा के चित्र से, मूर्ति से या फोटो से योग नहीं लगाना है। जबकि हम सबका अनुभव भी है कि मूर्ति के सामने खड़े हैं, मंदिर में हैं, फिर भी मन में दूसरी ही मूरतें घूमती रहती हैं। तो आखिर कब तक हम ये आधार लेंगे? चलो, परमात्मा का सत्य परिचय नहीं था, उनका सत्य ज्ञान नहीं था, तो हमने अनेक चित्र, मूर्ति, फोटो का आधार लिया। हरेक ने अपनी अपनी भावना से अपने अपने इष्ट के मंदिर बनाए और मूर्ति का आधार लिया। लेकिन अब जबकि हमें परमात्मा का सत्य परिचय मिला है, स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से हम आत्माओं को सत्य परिचय दिया है, तो अब हमें उस ज्ञान के आधार से मन और बुद्धि से उसको याद करना है। देखो, बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप की अंगुली पकड़कर चलता है, चालन गाड़ी पकड़कर चलता है। लेकिन हर माता पिता का प्रयास क्या होता है? क्या होता है कि बच्चा जल्दी जल्दी अपने पैरों के बल चले। कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं चाहेंगे कि बच्चा जीवन भर अंगुली पकड़ के चले, चालन गाड़ी लेके चले, है ना? हम उनके उनके पैरों के बल चलना सिखाते हैं। तो अब पिता परमात्मा भी हमें कहते हैं कि अब हमें एक कदम आगे बढ़ना है। साधन और क्रियाओं के आधार से भगवान को याद करते थे, अब हमें ज्ञान के बल से, मन और बुद्धि से उस पिता को याद करना है। और परमात्मा तो शरीरधारी है ही नहीं, शरीरधारी जो भी है, देवात्माएं, धर्मात्माएं, महात्माएं, पुण्यात्माएं, मनुष्यात्माएं हैं, परमात्मा तो है ही दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप। इन आंखों से देखने की बात ही नहीं है, हमें मन की आंख से उस ज्योति बिंदु परमात्मा को देखना है और बुद्धि से याद करना है। देखो अभी आप इस हॉल में बैठे हैं, अभी इस हॉल में सूर्य को आप नहीं देख रहे, पर जैसे ही मैंने सूर्य शब्द बोला, आप सबने क्या किया, क्या किया? मन की आंख से देखा, ज्ञान नेत्र से सूर्य को देखा कि सूर्य आसमान में वो प्रकाशमान गोला है जो हमें निरंतर ऊर्जा और प्रकाश देता है। ऐसे परमात्मा का ज्ञान जब बुद्धि में आ जाता है तो मन की आंख से, ज्ञान नेत्र से परमधाम निवासी परम ज्योति बिंदु परमात्मा को देखना है और उनको याद करना है, उनका चिंतन करना है, उनसे प्यार करना है, उस याद और प्यार में एकाग्र हो जाना, उसे योग कहते हैं। इसलिए हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है। यहाँ जो भी चित्र आप देख रहे हैं वो ज्ञान समझाने के लिए है। हमें इन चित्रों से योग नहीं लगाना है। हमारे हर सेवा केंद्र पर भी आप विजिट करेंगे और की भी होगी तो देखा होगा कि वहां अनेकानेक ज्ञान के चित्र लगे हैं, क्योंकि इस बात को तो आप मानेंगे ना कि घर में हम जैसे चित्र लगाएंगे ऐसा ही हमारा चरित्र बनेगा। अगर आप घर में एक्टर, क्रिकेटर, जानवर के मित्र संबंधी के फोटोज लगाएंगे, उठते बैठते वही देखेंगे और वैसे ही बनेंगे। इसलिए हम ज्ञान के चित्र लगाते हैं ताकि उठते बैठते परमात्मा के सत्य ज्ञान की बातें बुद्धि में आते रहे, तो वो सिर्फ समझने और समझाने के लिए है। हमें इन चित्रों से योग नहीं लगाना है। तो राजयोग बिल्कुल सहज, इजी एंड नेचुरल योग है, हर कोई योगी बन सकते हैं। राजयोग प्रवृत्ति मार्ग का योग है, मन, बुद्धि और संस्कार को शुद्ध, दिव्य और शक्तिशाली बनाने वाला योग है। इसलिए परंतु अक्सर जब भी हम परमात्मा का ये दिव्य संदेश भाई बहनों को देते हैं कि पवित्र बनो, योगी बनो, तो कई भाई बहने सोचते हैं कि हम तो गृहस्थी हैं, संसारी हैं, हम योगी कैसे बन सकते हैं। हमारे ऊपर तो बहुत जिम्मेवारियां हैं, हम तो घर बार नहीं छोड़ सकते हैं, परंतु राजयोग हमें क्या सिखाता है? राजयोग हमें ये सिखाता है कि हमें दुनिया को नहीं छोड़ना है, हमें देहभान को छोड़ना है। बॉडी कॉन्शियसनेस, देहभान मन की चंचलता का मूल कारण है। जब हम अपने वास्तविक आत्मा स्वरूप को भूल जाते हैं, खुद को देह समझने लगते हैं, देहभान में आते हैं, तो मन भटकने लगता है। आत्मा विस्मृति के कारण देह भान आता है, तो हमें दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, देह भान को मिटाने की आवश्यकता है। और देह भान मिटाने के लिए हमें देह का दमन करने की आवश्यकता नहीं है। कर्मेंद्रियों को हठ क्रियाओं से कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है, हमें आत्मा स्मृति में रहने की आवश्यकता है। इसलिए घर गृहस्थ में रहते हुए हमें अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाना है। हमें दुनिया से दूर कहीं जंगल में शांत एकांत में जाने की जरूरत नहीं है। अनुभव होगा कई बार स्थान शांत है, एकांत है, पर मन अनेक अंत में भटक रहा है, मन अनेक बातें याद कर रहा है। हमें मनोस्थिति शांत बनानी है, मनोस्थिति एकांत अर्थात एक परमात्मा के अंत में स्थित होना है। इसलिए कोई ड्रेस बदलने की भी बात नहीं है, कोई भगवे वस्त्र पहनने की, सफेद वस्त्र पहन लेने मात्र से हम योगी नहीं बन जाते हैं। ये सफेद वस्त्र इस विश्वविद्यालय का यूनिफॉर्म है। हर विद्यालय का, हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर कंपनी का अपना यूनिफॉर्म होता है। ये यूनिफॉर्म है, सफेद वस्त्र स्वच्छता, पवित्रता का, शांति का प्रतीक है। योगी आत्मा को स्वच्छ वस्त्र पसंद आते हैं, इसलिए ये यूनिफॉर्म है। मात्र यूनिफॉर्म पहन लेने से हम योगी नहीं बन जाते हैं, हमें अपनी वृत्ति स्मृति को शुद्ध बनाना है, हमें अपनी प्रवृत्ति को शुद्ध बनाना है। केवल बाह्य वस्त्र की बात नहीं है। इसलिए अगर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य लें, तो पवित्र और योगी बनना सहज है। इस प्रकार मन और बुद्धि परमात्मा से लगाने के लिए हमें कोई क्रियाकांड करने की आवश्यकता नहीं है। धूप दीप भजन कीर्तन पूजा पाठ हम कितनी क्रियाएं करते हैं और वो करके हम खुश हो जाते हैं कि मैं धार्मिक हूँ, पर हमारे जीवन पर आचरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। राजयोग का लक्ष्य बहुत ऊंचा है, हमें सिर्फ पूजन वंदन नमन दर्शन गायन अर्चन करके खुश नहीं हो जाना है, हमें स्वयं पूजनीय गायन योग्य महिमा योग्य बनना है, हमें अपने जीवन को इतना ऊंचा बनाना है। हम कहते हैं कई बार कि हम भगवान को याद करते हैं, परमात्मा को याद करने में कई जोर जोर से पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, अल्लाह अकबर, हे प्रभु, ओ गॉड, भगवान के नाम पर हम पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, कितना आवाज करते हैं, माइक लगाकर कितना आवाज करते हैं। हमें राजयोग में न चिल्लाना है, न पुकारना है, न आवाज करना है। बताया ना, परमात्मा को मुख का आवाज नहीं पहुंचता है, इसलिए माइक लगाकर आवाज करने की आवश्यकता नहीं है। कोई कहते हैं हम भगवान को याद करते हैं, पर अक्सर भगवान से मांगते रहते हैं, हाँ, हे भगवान, विद्या दो, बुद्धि दो, धन दो, तंदुरुस्ती दो, हाँ, मेरा ये काम कर दो। हम भगवान से मांगते ही रहते हैं, हमें परमात्मा से मांगना नहीं है। राजयोग में हम भगवान से मांगते नहीं है, क्यों नहीं मांगना है, क्यों नहीं मांगना है? हम भगवान के बच्चे हैं, हम उनके वारिस हैं, परमात्मा से प्राप्ति करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें मांगना नहीं है, हमें भगवान का लायक बच्चा बनना है। लायक बच्चे को माँ बाप अपने आप देते हैं, बताओ देते हैं कि नहीं देते? हाँ, लायक बच्चे को माँ बाप खुद सब कुछ देते, खुद नहीं खाते पीते मौज मनाते, बच्चों के लिए करते। हमें लायक ईश्वरीय संतान बनना है। हमें लायक ईश्वरीय संतान बनना है, इसलिए योगी बनना अर्थात योग्य बनना है। भगवान के बच्चे कहलाने योग्य बनना है, तो उनकी याद से ही प्राप्ति है, उनकी स्मृति से ही समर्थी आ जाती है। कई बहुत दीनहीन लाचार होकर भगवान को विनती करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, इतनी शक्ति हमें देना जाता है। हमें प्रार्थना नहीं करनी, राजयोग में हम भगवान को विनती नहीं करते, क्योंकि वो स्वयं ही दाता है, वो है ही दाता, वो दे ही रहा है, हमें उनको विनती करने की जरूरत नहीं है, वो निरंतर दाता है। हम ही तो महिमा करते हैं, शांति दाता, सुख दाता, शक्ति दाता, मुक्ति दाता, सदगति दाता, वो है ही दाता, वो दे ही रहा है। हमें क्यों नहीं मिल रहा है, वो हमें अपने आप में देखने की बात है, स्वदर्शन करने की बात है। जो निरंतर है ही दाता, दे ही रहा है, उसको कहना ये देना वो देना, ये तो उसका इंसल्ट करना है ना भाई, दे ही रहा है। अपने आप में देखिए ना, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मेरा उनसे योग नहीं है। योग मीन्स कनेक्शन, जोड़। आपके शहर में पावर हाउस है, पर आपको अपने घर में इलेक्ट्रिक पावर तो तब मिलेगा ना जब आप पावर हाउस से कनेक्शन करेंगे। परमात्मा स्पिरिचुअल पावर हाउस है, लाइट हाउस, माइट हाउस है, पर मुझे वो लाइट माइट तो तब मिलेगी ना जब मैं मन और बुद्धि की तार परमात्मा से जुड़। हमने अपने मन और बुद्धि की तार कहाँ जोड़ दी है? हमने अपने मन और बुद्धि कहाँ अटैच कर दिए हैं? व्यक्तियों में, वस्तुओं में, धन में, साधन में, व्यसन में, फैशन में, तेरी मेरी में, हमने मन और बुद्धि कहीं और जोड़ दिए हैं और फिर परमात्मा से मांगते रहते हैं। खुद को आत्मा समझकर मन और बुद्धि की तार परमात्मा से जोड़ना, उनके मनन चिंतन याद में रहना, उसको योग कहते। ये है राजयोग, जो मन और बुद्धि को प्यूरिफाई करता है, एम्पावर करता है। रोज मोबाइल की बैटरी चार्ज करने का अटेंशन रहता है ना? क्या करते हैं, मोबाइल छोड़ देते हैं और पावर पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। हमें भी रोज सुबह शाम कुछ समय सभी बातों से फारिग होकर अपने मन और बुद्धि को परमात्मा से जोड़ना है, अपने आप को एम्पावर करना है, चार्ज करना है। तो राजयोग माना मन और बुद्धि को परमात्मा से जोड़ना। योग मीन्स रिलेशन, संबंध जोड़ना। देखो दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, करोड़ों लोग रहते हैं, हमें उस की याद आती है? नहीं। हमें किसकी याद आती है? जिसको हम जानते हैं पहचानते हैं, वही हमें याद आते हैं ना। जिसका परिचय नहीं, जिसको हम जानते ही नहीं, उनको याद करने की बात ही नहीं है। परमात्मा की याद का पहला आधार उनका सत्य परिचय, उनका सत्य परिचय है। जब उनका सत्य परिचय मिल जाता है, हम स्वतः उनको याद कर सकते। परमात्मा की याद हमें नेचुरल आती रहे, उसकी विधि है भगवान से संबंध जोड़ो। हमें अक्सर कौन याद आते हैं, जिसके साथ हमारे रिलेशन है, कनेक्शन है, जिसके साथ हम रहते हैं, जीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, काम करते हैं, वही तो याद आते हैं। हमें उनको याद करना नहीं पड़ता है, हमें नेचुरल हमारे मित्र संबंधियों की याद हमें आती ही रहती। अगर हमें परमात्मा की याद नेचुरल आती रहे, ये अगर आप चाहते हैं, तो भगवान से संबंध जोड़िए, परमात्मा को अपना बनाइए। वो मेरा पिता है। भक्ति में हम भगवान के साथ सर्व संबंधों का गायन करते हैं। कौन सा श्लोक गाते हो? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का गायन करते। अब देखो, इससे ही सिद्ध है कि सर्व संबंध निराकार से ही हो सकते हैं। शरीरधारी माता भी और पिता भी, पति भी, बच्चा भी नहीं हो सकता है ना। सर्व संबंध निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा से ही हो सकते। राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि भक्ति में हम संबंधों का वर्णन करते हैं, गायन करते हैं। तुम माता पिता हम बालक तेरे, भक्ति में हम गायन करते हैं। राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि हमें मुख से गायन करने की जरूरत नहीं है, हमें मन से निश्चय करने की जरूरत है कि परमात्मा ही मेरा सब कुछ है। हमें मन से निश्चय करना है और मन वचन कर्म से परमात्मा के साथ संबंधों को फॉलो करना है। क्या आप रोज अपने माता पिता के सामने बैठकर गाते हैं क्या? तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे दादा हो, करते हो क्या? नहीं, आपको परख है यही मेरे माँ बाप है, आपको निश्चय है यही मेरे माता पिता है। ऑटोमेटिक याद आती है। परमात्मा के साथ हमारे असली अविनाशी संबंध, ये तो देह के संबंध है, एक जन्म के संबंध है। ये शरीर छूटेगा, ये संबंध भी समाप्त हो जाएंगे। नया शरीर लेंगे, नए माता पिता भाई बहन मिलेंगे। ये देह के संबंध एक जन्म के संबंध है। परमात्मा के साथ हमारे असली अविनाशी संबंध, वो मुझ आत्मा के माता पिता बंधु गुरु सखा स्वामी सर्वस्व है। जब परमात्मा के साथ हम सर्व संबंध जोड़ लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं, तो मुझे हर परिस्थिति में, हर बात में मुझे कौन याद आएगा? वही परमात्मा याद आएगा, क्योंकि वो मेरा सब कुछ है। तो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ो, उसे अपना बनाओ, ऑटोमेटिक हमें याद आ जाएगा। और तीसरी बात, योग अर्थात मिलन, वियोग अर्थात अलग हो जाना, योग अर्थात परमात्मा से मिलन मनाना। परमात्मा से मिलन मनोमिलन है, स्नेह मिलन है, भाव मिलन है। शारीरिक तो कोई बात ही नहीं है उसमें। योग अर्थात जोड़, कनेक्शन, उनसे हमारा कनेक्शन जुड़ा रहे मन और बुद्धि की सूक्ष्म तारों से। योग अर्थात संबंध, भगवान से सर्व संबंध जोड़ो और अपना बनाओ। योग अर्थात याद, स्मृति, क्रियाओं की बात नहीं है, बाह्याचार की बात नहीं है, उनके याद में रहना है, उनसे प्यार करना है, जिगरी उनका बन जाना, ये योग है। देखो संबंध तो अनेक है ना, परंतु अनेकानेक मित्र संबंधियों में हमें बहुत किसकी याद आती है, किसकी याद आती है? जिससे दिल का सच्चा प्यार है उसकी याद आती। वो प्यार माँ बाप से है तो माता पिता याद आएंगे, पत्नी बच्चों से है तो पत्नी बच्चे याद आएंगे, मित्र से है तो मित्र याद आएगा। दिल का सच्चा जिगरी प्यार जिससे हैं उनकी हमें याद आती है। इसलिए अगर परमात्मा की याद में मन नहीं लग रहा है, अक्सर कहते हैं ना, बरसों से भक्ति करने वाले आज तक भी ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा मन भटकता है, हम एकाग्र नहीं हो पाते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? हमारा परमात्मा से सच्चा प्यार नहीं है, इसलिए मन भटक रहा है। सच्चा परिचय चाहिए, सर्व संबंध जोड़ने हैं और दिल का सच्चा प्यार है, तो आप सहज एकाग्र हो सकते हैं, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए चेक करो अपने आप को। बेशक हम भगवान को याद करते हैं, पर कोई मात्र नियम से याद कर, वे हमारा नियम है। सुबह शाम धूप दीप करना, आरती गाना कर लेते हैं, न सही ज्ञान है न सच्चा प्यार है, एक नियम मात्र निभा लेते हैं। कोई स्वार्थ से याद करते हैं, हमें भगवान से कुछ चाहिए इसलिए हम उसको याद करते हैं, मिन्नत मानते हैं, मैं ये करूंगी वो करूंगी। हाँ, मतलब है, स्वार्थ है। कोई भय से भक्ति करते हैं कि मुझे कुछ हो न जाए, मैं कहीं मर न जाऊं, कोई रोग न लग जाए, भय से भगवान को याद करते। हमें प्यार से परमात्मा को याद करना है। इसलिए राजयोग सहज योग है, ज्ञान योग है, प्रेम योग है। हम कर्म करते भी मन ही मन परमात्मा की याद में रह सकते हैं। लास्ट बात, राजयोग इतना सहज है, हमें आंख बंद करके बैठने की भी आवश्यकता नहीं। अक्सर परमात्मा को याद करने बैठते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं। हमारी ये मान्यता रही है कि आंख खुली होगी, सब कुछ दिखाई देगा, मन भटक जाएगा, इसलिए हम आंख बंद करके बैठते। पर क्या आंख बंद करने के बाद मन बुद्धि नहीं भटकते हैं? क्या अनुभव है? भटकते हैं ना, क्योंकि आंख नहीं देखती है, आंख द्वारा मन और बुद्धि देखते हैं। हमने बाह्य आंखें बंद कर दी पर मन की आंख भटक रही है, तो एकाग्रता कहां से आई? बाह्य आंखें खुली हैं पर मन की आंखें एकाग्र है परमात्मा के प्रति, तो अनेक बैठे हों, सब कुछ देखते भी नहीं दिखता है। हमें मन और बुद्धि की आंखें परमात्मा के प्रति फोकस करने की आवश्यकता है। हम प्रवृत्ति में रहते हैं, आंखें बंद कितना समय कर सकेंगे? क्यों नहीं हम ये अभ्यास करें कि आंखें खुली हों, मन बुद्धि परमात्मा की याद में हो, तो हम मैक्सिमम टाइम परमात्मा को याद कर सकेंगे। इसलिए आंखें नेचुरल खुली रखें, ना बंद करने की कोशिश करें, ना आंखें फाड़ कर बैठना है। आंखों पर स्ट्रेस नहीं देना है, आंखें नेचुरल खुली रहे, अटेंशन मन बुद्धि पर रखना है कि मुझे परमात्मा की याद में रहना है। तो ये है राजयोग की विधि, जो स्वयं पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से हम आत्माओं को बताई है। मैं चाहूंगी योग कैसे करना है ये अब आपको स्पष्ट है। हम विधि पूर्वक और ज्ञान पूर्वक पिता परमात्मा को याद करने का अभ्यास करेंगे। सभी व्यवस्थित अलर्ट होकर बैठ जाएं, कमर सीधी करके बैठेंगे तो आप थकेंगे नहीं। एक दो से अलग अलग होकर बैठेंगे, टच करके नहीं बैठें। अपना डायरी, पर्स, फाइल, बैग साइड में रख दें, गोद में गले में लटका के ना बैठें। आंखें नेचुरल खुली रहें। आज मैं आपको योग अभ्यास करा रही हूं, इसलिए मेरे मस्तक में देखेंगे। मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा हैं। खुद को आत्मा समझकर भल शरीर से हम यहां बैठे हैं, मन और बुद्धि से अपने असली घर परम धाम में जाएं, मन की आंख से परम धाम निवासी परम ज्योति बिंदु पिता परमात्मा को देखें, उनको याद करें। मैं कमेंट्री से गाइड करूंगी, जो विचार मैं आपको दूं वो मन ही मन रिवाइज करें, अर्थ समझें, रियलाइज करें। उस याद और प्यार में स्थित होना योग कहा जाता है। कुछ क्षणों के लिए सभी बातों से अलग हो जाए। आसपास की व्यक्तियों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से साक्षी हो जाइए। स्वयं के मस्तक बीच अपने चैतन्य आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं एक आत्मा हूं, एक इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की कंट्रोलर हूं। मेरा असली घर इस दुनिया से दूर, पांच तत्वों से पार परम धाम है। मैं जानती हूँ पिता परमात्मा भी परम धाम के निवास। मैं मन की आंख से, ज्ञान नेत्र से, परम ज्योति बिंदु पिता परमात्मा को देख रहे हैं। मुझ आत्मा के अति प्रिय मेरे परम पिता आपके सत्य ज्ञान को पाकर मुझे अति हर्ष हुआ है। मेरे मन का अंधकार समाप्त हो गया है। मेरी बुद्धि ज्ञान से रोशन हो गई। मेरा विवेक जाग गया है। जीवन का सच्चा ठिकाना मुझे मिल गया। मेरे प्यारे शिव बाबा, जो सत्य ज्ञान आप हमें देते हैं, जिन गुणों के आप सागर हैं, जिन रूहानी शक्तियों के आप अकुट भंडार है, प्यारे बाबा, आपके संपूर्ण सत्य ज्ञान को, सर्व गुणों को, सर्व शक्तियों को मुझे भी अपने जीवन में धारण करना है। मुझे आपके जैसा बनना है। आप शांति के सागर, शांति दाता है। आपकी संतान में आत्मा भी शांत स्वरूप मुझे भी शांति दूत बनकर सर्वत्र शांति फैलानी है। प्यार के सागर बाबा, आपकी अमर संतान मैं आत्मा भी प्रेम स्वरूप मुझे सबके साथ प्रेम से चलना है, सबको सुख देना है। मेरे सदा पावन सर्वशक्तिमान मीठे शिव बाबा, आपकी याद से मैं आत्मा भी शुद्ध पवित्र बनती जा रही हूँ। मैं आपसे योग लगाती हूँ, मैं भी शिव शक्ति कल्याणमयी शक्ति बनती जाती हूँ। मुझे यही निश्चय और खुशी है मैं आत्मा आपकी ईश्वरीय संतान हूँ। मैं शांत हूँ, शुद्ध हूँ। मैं एक दिव्य ज्योति चैतन्य शक्ति, ओम शांति।